नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 36। जीवराशि भिराकीर्ण अंडकोशांघ्रिपो महान् तत्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् जीवराशि आकीर्ण अंडकोशांघ्रिपो महान् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् जीवराशि भी आकीर्ण अंडकोशांघ्रिपो महान् तत्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् जीवराशिभिराकीर्ण अंडकोशांघ्रिपो महान् तन्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् जीवराशिभिराकीर्ण अंडकोशांघ्रिपो महान् तत्मूलत्वात् अच्युतेज्या जीवात्मतर्पणम् जीवराशिभिराकीर्ण अंडकोशांघ्रिपो महान् तत्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् मतय जीवराशि आकीर्ण अंडकोशांघ्रिपो महान् तत्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् जीवराशि आकीर्ण अंडकोशांघ्रिपो महान् तन्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् शब्दार्थ इस प्रकार है। जीवराशि भी करोड़ों जीवों द्वारा आकीर्ण भरा हुआ या विस्तीर्ण अंडकोश समग्र ब्रह्मांड, अंग्रीपा वृक्ष के समान, महान अत्यंत विशाल, तत्मूलत्वात् इस वृक्ष की जड़ होने से, अच्युत इज्जा भगवान की पूजा, सर्व सबों की, जीव आत्मा जीव, तर्पणम तुष्टि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद, जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ भगवान अच्युत कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो जाती है। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मेरी भक्ति में लग जाता है और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करता है। अन्य जीवों की, विशेषतया गरीबों की सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, और यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक साधन बना रखे हैं, किंतु वास्तव में वे बेचारे जीवों का वध करने में पटु है। वैदिक वांग में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की गई है। जैसा कि किसी पिछले श्लोक में बताया गया है कि दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल है और कृष्ण का पूजन हरेक का पूजन है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने का अर्थ है सारी शाखाओं टहनियों को तुष्ट करना। दूसरी बात यह है कि यह ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक जीवों से परिपूर्ण है, जीव राशि भी आकीर्ण। आधुनिक विज्ञानी एवं तथाकथित विद्वानों का विचार है कि इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों में जीव नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि वे चांद में गए किंतु वहां उन्हें कोई जीव नहीं मिला, किंतु श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ इस मूर्खतापूर्ण विचारधारा से सहमत नहीं है। जीव तो सर्वत्र है, एक या दो की संख्या नहीं अपितु जीव राशि भी, लाखों में जीव है। यहां तक कि सूर्य में भी जीव है, यद्यपि यह अग्नि के तुल्य ग्रह है। सूर्य का प्रधान जीव विवस्वान कहलाता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। विभिन्न लोकों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यह कहना कि केवल यही लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य लोक शून्य है मूर्खतापूर्ण है, इससे असली ज्ञान का अभाव ही सिद्ध होता है। ओम अज्ञान थिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वंशाकल्पतरूभश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज की इस सुबह की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। वास्तविक यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतम के ऊपर बोलने की, लेकिन एक सेवा के तौर पर कुछ मेरे अनुभव मैं प्रदान करना चाहता हूँ। तो यह श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद है, अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 36। इस अध्याय का शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन, और ये अध्याय की शुरुआत होती है युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न से। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है कि हम जैसे गृहस्थ लोग जो घर पर ही रहते हैं और जो जीवन का लक्ष्य नहीं जानते हैं, वह गृहस्थ व्यक्ति सरलता से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यह प्रश्न है युधिष्ठिर महाराज का नारद मुनि को, और नारद मुनि यहां पर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन। और नारद मुनि का कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, हम जानते हैं कि नारद मुनि सन्यासी तो, लेकिन वो भगवान के महान भक्त है, महाजन है, फिर भी वो पारिवारिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। और हम अभी देख आपने एक महीने से ज्यादा सुनते आ रहे हैं कि गृहस्थ के क्या कर्तव्य है, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, और इसकी पूरी विवेचना नारद मुनि कर रहे हैं। इसके पहले अध्याय में नारद मुनि ने तीन आश्रम के बारे में बताया, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम बारे में इस अध्याय में बता रहे हैं। तो इस तरह आज के श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि यह समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ भगवान कृष्ण है, और कृष्ण की पूजा करने से सब जीव की पूजा हो जाती है। तो हम ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि क्या युधिष्ठिर महाराज को जीवन का लक्ष्य पता नहीं था? क्या अर्जुन को शरीर और आत्मा का भेद पता नहीं था? फिर वो लोग इस तरह का प्रश्न क्यों कर रहे? तो हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज अज्ञान में थे, भगवान की कृपा से वे ऐसे प्रश्न पूछ रहे, और कभी कभी इस तरह के प्रश्न वो संपूर्ण मानव समाज के हित के लिए पूछते हैं। हम जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज महान भक्त है, वो साधारण नहीं है, वो धर्मराज के पुत्र है, और धर्मराज एक महाजन है, और महाजन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सही सही जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म क्या है, और जो शास्त्र क्या है ये जानता है। हम जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज और पांच पांडव एक बार जो वनवास में घूम रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा प्यास लगा, तो उन्होंने अपने भाइयों को बोला कि सहदेव को बोला कि पानी ले आइए। तो हम जानते हैं कि उधर यक्ष था, वो बोला मेरे प्रश्न के उत्तर दो, नहीं तो आप इस पानी को स्पर्श नहीं कर सकते। उन्होंने सुना नहीं, पानी पिया, उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह उनके चारों भाई की मृत्यु हो गई, अंत में युधिष्ठिर महाराज गए, और जब यक्ष ने उन्हें पूछा कि इस पानी को आप स्पर्श नहीं कर सकते, ये मेरा जलाशय है, मेरे कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए तभी आप पानी को स्पर्श कर सकते। तो हम देखते हैं कि महाभारत ने कितने सुंदर रूप से युधिष्ठिर महाराज ने हर प्रश्न का उत्तर दिया, इससे हम जानते हैं कि वो कितने बुद्धिमान थे, सब शास्त्र का ज्ञान उन्हें पता था, लेकिन उनकी एक हम नम्रता समझ सकते हैं या मानव समाज की भलाई के लिए इस तरह का प्रश्न वो पूछ रही है। और नारद मुनि भी बहुत अच्छे ढंग से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और जब हम इस श्रीमद् भागवतम की इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हम ठीक ठीक समझ सकते हैं कि पारिवारिक जीवन हमें किस तरह बिताना चाहिए। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गीता का 10वें अध्याय का श्लोक बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये चतुर्श्लोक की गीता का पहला श्लोक है, 10वें अध्याय में चतुर्श्लोक की गीता है, 10.8, 9, 10, 11, इस चार श्लोक में गीता का सार हमें प्राप्त होता है। तो इस श्लोक से हम पता चलता है कि भगवान ही समस्त भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड के मूल है, और जो व्यक्ति इस ज्ञान को सही सही समझता है वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं जिनको सही से ज्ञान नहीं है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण तो ब्रह्मा जी ने किया है, तो ब्रह्मा जी ही मूल होने चाहिए। लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि भाई वही ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस ब्रह्मांड के कारण कृष्ण नहीं तो समस्त आध्यात्मिक और भौतिक ब्रह्मांड के कारण कृष्ण है। ये भौतिक ब्रह्मांड तो इस पूरी सृष्टि में एक छोटा सा छोटी सी सृष्टि है। ऐसा कहा तो कहते हैं कि जो राई का दाना होता है, राई के दाने अगर एक बोरी में राई के दाने हैं तो ये सृष्टि ये ब्रह्मांड हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक राई के दाने का समान है। ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड इस पूरी सृष्टि में है, सारों के स्रोत कृष्ण है। अनेक अनेक उपनिषदों में भी ये कहा गया है कि किस प्रकार कृष्ण सबके मूल है। जिस तरह नारायण उपनिषद है, ये मैंने प्रभुपाद जी का जो भगवद्गीता का 10.8 श्लोक का जो तात्पर्य उसमें से कुछ पॉइंट लिए हैं, हम समझ सकते हैं। वैसे तो भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान मूल है, लेकिन कभी कभी कोई प्रश्न पूछता है तो हम उसमें बता सकते हैं कि नारायण उपनिषद में कहा गया है कि नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद एकादश रुद्र जायन्ते, कि नारायण ही नारायण से ब्रह्मा जी आए हैं, नारायण से एकादश रुद्र आए हैं, नारायण से प्रजापति आए हैं, सब कुछ नारायण से आए हैं। और हम ये जानते हैं कि ये नारायण भगवान कृष्ण के एक अंश है, तो इसलिए कृष्ण मूल है। महाउपनिषद में भी कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण थे, ना कि ब्रह्मा, ना कि शिव, ना कि चंद्र, ना कि सूर्य, ना कि कोई देवता थे, केवल नारायण थे। ये महा उपनिषद का कहना है। मोक्ष धर्म नाम का एक शास्त्र है, उसमें कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही प्रजापतियों की, शिव जी की तथा अन्यों की उत्पत्ति की है, लेकिन मेरी माया के द्वारा ये लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है नारायण भगवान है, जिनसे ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से शिव की उत्पत्ति हुई। तो अनेक अनेक उपनिषद पुराण और अनेक शास्त्रों से हम देखते हैं कि कृष्ण ही मूल है। और इतना ही नहीं कि कृष्ण भी गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कि हे धनंजय मैं ही सबका मूल हूं। और जिस तरह सारे मोती एक धागे में होते हैं उसी तरह सारा संसार मेरे में आश्रित है, इस तरह कृष्ण कह रहे हैं। तो इस तरह हम जानते हैं कि कृष्ण सबके मूल है। इतना ही नहीं कि कई बार कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य प्रचार करते हैं कि कृष्ण मूल है, हम यहां तक बता दें कि विष्णु के भी मूल कृष्ण है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। अरे आप बोलते हैं कि हमने तो सुना है कि कृष्ण विष्णु के अवतार है, और आप बोल रहे हैं कि कृष्ण के विष्णु ही कृष्ण के विष्णु के मूल कृष्ण है, विष्णु के स्रोत भी कृष्ण है, तो कहीं समझ सकते हैं। तो भगवान को पता था इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही लीला की। हम देखते हैं कृष्ण बुक में लीला आती है भागवतम के 10वें स्कंद में, कि एक बार कृष्ण रोज की तरह, कृष्ण रोज एक असुर का वध करते थे। जब तक असुर का वध नहीं करते तो उनको भूख नहीं लगती थी, असुर का वध करेंगे फिर थोड़ा भूख लग जाती थी, खाते थे। तो एक बार कृष्ण ने अघासुर का वध किया, और अघासुर को सब लोग डरते थे, यहां तक कि देवता लोग भी उससे डरते थे। और ये असुरों के पास थोड़ा मिस्टिक सिद्धि होती है, मिस्टिक पावर होता है, तो ये कुछ भी रूप धारण कर सकते थे। तो अघासुर ने एक बहुत बड़े अजगर का रूप धारण कर लिया, बहुत बड़े अजगर का रूप, और ऐसे ही वो एक गुफा की तरह मुंह खोले खड़ा था। तो सब बाल गौल बालों ने देखा कि अरे कि बहुत सारी अच्छी गुफा है, चलो इसमें चलते हैं, थोड़ा जाके मौज मजा लेते हैं। हालांकि कृष्ण जानते थे कि राक्षस है, लेकिन कृष्ण सोचे ठीक है जो करना करने तो बाद में हम देख लेंगे। तो सारे गौरबल अंदर प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन अगासुर राह देख रहा था कृष्ण की कि जब तक कृष्ण प्रवेश नहीं करेंगे मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। तो सारे गौरबल तो अंदर चले गए। बाद में कृष्ण ने सोचा कि इनकी रक्षा के लिए मुझे भी अंदर जाना चाहिए। तो कृष्ण ने भी अंदर प्रवेश किया और जैसे ही कृष्ण ने पढ़ा उसने मुंह बंद कर दिया। उसको लगा अभी मेरा काम बन गया, अभी जाके बोलाऊंगा बताऊंगा कंसों को काम हो गया। लेकिन जैसे कृष्ण अंदर चले गए और मुंह बंद कर दिया तो थोड़ा सफोकेशन होने लगा उनको। तो उन्होंने उसको पेट फाड़कर बाहर आ गए। वो तो समझ नहीं पा रहा था कि मेरा पेट क्यों फट रहा है, कौन इतना प्रेशर डाल रहा है। तो इस तरह अगासुर की मृत्यु हो गई। तो जैसे अगासुर की मृत्यु हो गई सारा समाचार ब्रह्मांड में चला गया, देवताओं को पता चला, सब ब्रह्मा जी को पता चला कि अगासुर का वध एक छोटे से बालक ने किया है। तो बोले देखने के लिए ब्रह्मा जी बोले देखते जरा कौन बालक है जो अगासुर से, जो देवता को जो देवता लोग डरते थे उसका भी वध कर दिया। तो इस अगासुर का वध होने के बाद कृष्ण सब बच्चों को सब गौरवों को लेकर बैठ कर खा रहे, दही दही खा रहे, भात खा रहे और बहुत मजा कर रहे। तो ब्रह्मा जी अपना स्वयं स्वयं को क्या बोलते हंस हंस वाहन पर वहां आ गए। लेकिन जब आए तो यहां तो मस्ती चल रहे है ना। वो सोचते थे कि भगवान ने तो अवतार लिया है, सोचते थे कि यही भगवान है क्या देखने के लिए आए थे। राधा गिरधारी भगवान की जय। तो वो तो जानते थे कि भगवान है जिनकी पूजा जिनको भोग लगता है मंत्रों के द्वारा, और उनके तो मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा होती है। और यहां भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कोई बच्चा उनके मुंह से कुछ पदार्थ निकाल रहे हैं अपने मुंह में डाल रहे हैं, अपने मुंह में डाल रहे हैं। और यहां कोई मंत्र उच्चारण नहीं हो रहा, कोई भोग नहीं लग रहा है, एक दूसरे के प्लेट से खा रहे हैं, या तो बच्चे लोग उनके प्लेट से खा रहे हैं, भगवान उनके प्लेट से खा रहे हैं। तो अचंभित हो गए, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं। उनके एक हाथ में दही भात है, ऐसे कैसे, कोई प्लेट नहीं है वहां सोने की, या चम्मच नहीं है, या कोई मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है। तो वो अभी अजीब सा लगा, थोड़ा टेस्ट करते हैं। अभी ब्रह्मा जी के पास भी थोड़ा योगिक शक्ति है, तो ब्रह्मा जी बोले चलो सूर्य को थोड़ा दिया दिखाते हैं। थोड़ी योग शक्ति है उन्होंने अपना यूज किया उधर। तो जो बच्चों ने देखा कि बछड़े बहुत दूर गए हैं, तो कृष्ण बोले कोई प्रॉब्लम नहीं मैं हूं, लेकिन क्या हो गया कि पहले तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, सारे बछड़े चुरा लिए। तो बच्चे लोग देख रहे कि बछड़े आसपास नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, अपहरण कर लिया था। तो कृष्ण बोले चिंता मत करो मैं देख लूंगा बाद में। नहीं नहीं बोले मैं तो देख के आते हैं। तो जैसे ये ग्वालबाल बछड़ों को देखने गए और कृष्ण वहां अकेले रह गए, तो ब्रह्मा जी ने ग्वालबाल का भी अपहरण कर लिया। बछड़े भी गए, ग्वालबाल गए, कृष्ण अकेले रह गए, कुछ नहीं समझा, कोई बछड़े भी नहीं, गाय भी नहीं, बछड़े भी नहीं। तो कृष्ण तो अंतर्यामी है, समझ गए कि ब्रह्मा जी की करतूत है, वो अपनी योग शक्ति मेरे ऊपर दिखाना चाहते हैं, मैं तो योगेश्वर हूं, है ना। तो भगवान भी अपने भक्तों के माध्यम के द्वारा समस्त जगत को दिखाना चाहती है वो कौन है। तो कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक, तो कृष्ण ने तुरंत, अभी कृष्ण सोचे कि अभी अकेले मैं जाऊंगा कैसे, सब लोग पूछेंगे बछड़े कहाँ है, बालक कहाँ है, तो क्या बताऊंगा, तो मैं परेशानी हो जाएंगे। सोचा कि अभी एक ही उपाय है कि मुझे ही अपना विस्तार करना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत इच्छा से बालक उत्पन्न हो गए, बछड़े उत्पन्न हो गए। भगवान कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता कुछ चीज के लिए, उनकी इच्छा मात्र है सब कुछ होता है, उनकी शक्तियां कार्य करती है। तो अपना अपने ही विस्तार रूप में उन्होंने बछड़े तैयार किए सबके। ब्रह्मा जी गए और आ गए, है ना, ब्रह्मलोक में गए, अपने लोक में रख दिया, जहां कहीं भी उन्होंने रखा। जैसे आए तो हम जानते हैं कि ब्रह्मलोक में जाएंगे और आएंगे तब ब्रह्मलोक का एक क्षण, कहते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे समय धीरे धीरे हो जाता है। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ के 6 महीने देवताओं के या स्वर्गलोक के 12 घंटे के समान है, और यहाँ का 1 साल देवताओं के 1 वर्ष के समान, यहाँ 1 साल बीतता है तो देवताओं का खाली 1 दिन बीतता है। तो ये इंद्रलोक की बात है, लेकिन ब्रह्मलोक तो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी लोक है। तो वहां का समय जैसे ब्रह्मा जी के 100 साल पृथ्वी लोक के करोड़ करोड़ साल के समान है, 311 अरब या खरब वर्ष के समान है। तो वहां का एक क्षण यानी यहाँ का एक वर्ष का समय, तो गए एक्शन में आए तो देख रहे यहाँ तो एक साल बीत गया था और देख रहे कि ग्वाल भाल भी है और बछड़े भी है, और बाद में तुरंत लगा कि शायद उन्होंने ले लिया होगा, तो जाके देखा तो वहां भी एक ग्वाल भाल है, वहां भी बछड़े है, वहां एक सेट है, यहाँ एक सेट है, और वो भाग रहे थे ऊपर नीचे कर रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वास्तविकता है। कृष्ण बोल रहे थे तुमको जो करना है करो, और कृष्ण भी अपने योग शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, और योग एक साल से चल रहा था ऐसा। बछड़े जाते थे, ग्वाल बाल भी जाते थे, और कृष्ण की विशेष लीला थी, कृष्ण चाहते थे, क्योंकि सबने इच्छा किया था कि कृष्ण हमारे बेटे बन जाए, इस तरह की इच्छा किया था। तो इस एक साल के दौरान कृष्ण ने सबको मौका दिया, सारे ग्वाल बाल कृष्ण ही थे विष्णु रूप में, और सब लोग वो गोपियों का दूध पी रहे थे, और गायों भी चाहती थी कि कृष्ण डायरेक्ट हमारा दूध पिए, तो गाय बछड़ों के रूप में कृष्ण सब गायों का दूध पी रहे थे, तो सब आनंद में हो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक साल बीत गया होगा, तो एक साल से ये सब चल रहा है, तो सोचा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, समझ गए कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, और मेरी मेरे को सिखाने के लिए भगवान ने लीला रची है। तुरंत ब्रह्मा जी शरण आ गए, और जैसे उनके उनके हृदय में शरणागति का भाव उत्पन्न हो गया और समझ गए कि भगवान है, तो भगवान भी समझ गए कि मुझे भी अभी बता देना चाहिए कि यह ब्रह्मा जी को कौन है। तो तुरंत उन्होंने इशारा किया तो सारे बालक विष्णु रूप में परिवर्तित हो गए, और सारे बछड़े विष्णु रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह भगवान ने बता दिया कि विष्णु का भी स्रोत मैं हूं, ब्रह्मा शिव देवता का तो बात दूर है, विष्णु का भी स्रोत मैं हूं। तो इस तरह हम लोगों को बता सकते कि जो विष्णु है कृष्ण के ही, कृष्ण से आते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि गर्भदक्षा विष्णु क्या है, ईश्वरदक्षा विष्णु और महाविष्णु, कर्णदक्षा विष्णु पता ही नहीं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ शास्त्रों के प्रभुपाद जी के द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको ठीक ठीक समझ में आता है। इस इस्कॉन में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद जी ने ठीक ठीक ज्ञान दिया है और बता दिया है कि कृष्ण ही सबके मूल है, जड़ है। भागवतम में चतुर्दश स्कंद में आता है वर्णन कि एक श्लोक में कि यथा तरोर मूल निशेच नेन तृप्त्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियानाम तथैव सर्वहरणम अच्युत इज्जा। कहते हैं कि जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष के टहनियों और फलों को, पत्तियों को, फूलों को अपने आप जल मिल जाता है, और जिस तरह पेट में अन्न डालने से सब इंद्रियों को तुष्टि हो जाती है, ये श्रीमद् भागवतम का कथन है। तो पंचतंत्र में कहानी आती है कि सबने सुनी है कि एक बार सारे इंद्रिय सोचते हैं कि सारा कष्ट तो हम ही कर रहे हैं। हाथ सोचता है कि मैं काम कर रहा हूं, पांव सोचता है कि मैं फैक्ट्री में जाता हूं या मैं काम पर जाता हूं, आंख सोचता है कि मैं दिशा दिखाता हूं, बुद्धि सोचता है कि मैं बुद्धि देती हूं। सारे इंद्रिय एकत्र हो गए और सोचे कि सब हम कष्ट कर रहे हैं, लेकिन एक है जो पेट कुछ काम नहीं करता, बैठा बैठा सब खाते रहता है। तो उन्होंने सोचा कि बस हम कुछ नहीं करेंगे आज से, इस पेट को अगर खाना है तो जैसे ले ले दो। हाथ ने सोचा कुछ नहीं करूंगा, पांव ने सोचा कुछ नहीं करूंगा, और सब जिन्होंने स्ट्राइक कर लिया, हड़ताल, जैसे कल भारत बंद था, हड़ताल कर रहे थे लोग, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसे इंद्रियों ने सोचा कि हमारी मांगे, हमको है ना, हमको भोग करना है, तो कुछ नहीं, बैठ रहे हैं। ऐसे एक दिन चला गया, दो दिन चला गया, उनको समझ में आया कि हालांकि हम कष्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको कमजोरी आ रही है। पहले तो हम मेहनत कर रहे थे, पेट में डाल रहे थे, तो कमजोरी नहीं महसूस होती थी, तो वो समझ गए कि एक्चुअली हमें मेहनत करके पेट में डालना है, क्योंकि पेट जड़ है, और पेट में डालेंगे तो वहां से हमें शक्ति मिलेगी। तो इस तरह हमें शास्त्र के द्वारा समझना चाहिए कि मूल कौन है। मूल कृष्ण है, कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाएंगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग अन्य जीवों की, विशेषतः गरीबों की सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक होते हैं। आजकल एक नारा आ गया है कि दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण, गरीबों को लोग दरिद्र नारायण कह रहे हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करो, उनके ऊपर कृपा करो। क्या ये बड़े बड़े मंदिर बांधते हो आप, है ना, लोगों के पास मंदिर बांधने जाओगे, कोई एक नास्तिक व्यक्ति होता है तो हमको सिखाने लगता है कि क्यों चंदा मांगते हो, 25 करोड़ का मंदिर बांध रहे हो, क्या मिलेगा आपको। एक पत्थर की मूर्ति को पूजते हो उसके लिए 25 करोड़ का मंदिर। इसलिए ये जो दरिद्र नारायण है उनकी पूजा करो, उनके लिए कुछ करो, उनको खिलाओ पिलाओ। लेकिन हम बोलते भाई नारायण दरिद्र नहीं है, तुम दरिद्र हो, है ना। नारायण लक्ष्मीपति है, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां वैकुंठ लोक में उनकी पूजा करती है, उनकी सेवा करती है। तुम लोग थोड़ा लक्ष्मी प्राप्त करने की लक्ष्मी की पूजा करते हो और लक्ष्मी से प्रार्थना करते हो को थोड़ा धन दीजिए, थोड़ा कुछ संपत्ति दीजिए, वही लक्ष्मियां उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करते हैं। तो नारायण दरिद्र नहीं है, नारायण लक्ष्मीपति है। तो आप भी लक्ष्मीपति की नारायण की सेवा में लग जाओ। और ये भी एक्चुअली केवल लक्ष्मी की पूजा करना भी ठीक नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। अगर किसी घर में जाओ, अगर आप किसी स्त्री की तुलना स्तुति करना चालू कर दो, उसका पति घर में है तो स्त्री को अजीब लगता है, अरे मेरा पति की स्तुति करो, वो सब कुछ है, वो मेरा पालन करता है। तो लक्ष्मी को भी उसकी अकेली पूजा करना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन देवी के रूप में भगवान का आदेश है तो वो जीव के ऊपर कृपा करती रहती है। लेकिन जो लोग लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी एक्चुअली सही रूप में प्रसन्न रहती है। वही लोग, वही लक्ष्मी उनको भक्ति देवी के रूप में प्रसन्न होकर उनको भक्ति प्रदान करती है। और वही विधि है एक्चुअली, लक्ष्मी और नारायण के साथ में पूजा करनी चाहिए, सीताराम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण इनकी पूजा करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि अरे मानव सेवा ही माधव सेवा है, मानवों की सेवा करो बस। लेकिन हम बोलते हैं कि माधव सेवा ही मानव सेवा है, क्योंकि माधव से माधव या कृष्ण सबके मूल है और उनकी अगर सेवा करेंगे पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो सबके मूल है, सबकी पूजा हो जाती है। आज समाज में जो भी सुख शांति चैन है, हम समझते हैं कि क्योंकि प्रभुपाद जी ने समस्त जगत में इस राधा कृष्ण का पूजा चालू कर दिया है, समस्त जगत में राधा कृष्ण के मंदिर खोले हैं, इसलिए थोड़ी कुछ सुख चैन आज हम जगत में देख रहे हैं। तो कलयुग में इस तरह की शांति मिल नहीं सकती। अगर हम श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद पढ़ेंगे तो हमको चक्कर आएगा, कलयुग के लक्षण बहुत विपरीत है। कलयुग के लोगों का लक्षण है झूठ मूठ का व्यवहार करना, कपटता करना, हिंसा करना, कलह करना, झगड़ा करना, सब कुछ। वो लोग शांति से रह नहीं सकते। लेकिन आज भी जैसे प्रभा जी दूसरा महायुद्ध होकर अभी 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, फिर भी लोग सोचते हैं अभी तीसरा महायुद्ध क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो उनको बताते हैं कि क्योंकि प्रभुपाद जी ने संसार में इस हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार किया है, सारे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी की प्रेरणा से माधव सेवा हो रही संपूर्ण जगत में। आज अमेरिका, अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब जगह में, सारे खंडों में माधव की सेवा हो रही है। इसलिए थोड़ी मानवता में सुख चैन है। पता जो हम बोल रहे कि माधव सेवा ही मानव सेवा है, ये इसका प्रमाण है। लेकिन अगर केवल मनुष्य मानव की सेवा में लगा रहेगा तो वो झगड़ा करते रहेगा, क्योंकि वो आजकल लोग समाज सेवा भी करते हैं, उसमें उनका स्वार्थ रहता है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा गुणगान होना चाहिए, मेरा होना चाहिए मेरा। लेकिन भक्त लोग माधव की सेवा करते हैं उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर खोले, कई मंदिर को नाम नहीं दिया कि प्रभुपाद मंदिर, मतलब नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन आज कई बड़े बड़े उद्योगपति मंदिर खोलते हैं, पहला शर्त रहता है मेरा नाम होना चाहिए उधर, फलाना फलाना का मंदिर, फलाना फलाना का मंदिर। अंदर तो भगवान की मूर्ति रहेंगी और मंदिर पे उसका नाम रहेगा, हालांकि जैसे वही भगवान हो गया। प्रभुपाद जी इतने सारे बड़े बड़े मंदिर खोले, कहीं भी नाम नहीं दिया अपना, कहीं भी नाम नहीं दिया। लेकिन जैसे भगवान के भक्त में और भगवान में होड़ लगती है कि भगवान का भक्त चाहता है कि कृष्ण का नाम सारे जगत में होना चाहिए, और कृष्ण की इच्छा होती है कि मेरे भक्त का नाम सारे जगत में होना चाहिए। जिस तरह प्रभुपाद जी ने कृष्ण का गुणगान सारे जगत में कर दिया और भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद जी का नाम सारे जगत में कर दिया, ए बे अश जो त्रिभुवन है ना, तो आज प्रभुपाद जी का नाम सब जगह है, सब लोग जानते हैं आज हरे कृष्ण मूवमेंट को। पाश्चात्य देश में तो यहां तक जानते हैं लोग कि अगर आपको वेजिटेरियन फूड चाहिए तो हरे कृष्ण मंदिर में चले जाइए, और स्वामी प्रभुपाद जी का जो आश्रम है मंदिर है वहां चले जाइए, ये आज खाति है। आप जाइए अमेरिका में वेजिटेरियन फूड चाहिए, हरे कृष्ण मंदिर में जाइए। प्रभुपाद जी ने अमेरिका देश में भी लोगों को वेजिटेरियन फूड खिला दिया। वहां के तथाकथित स्वामी प्रभुपाद जी को बोले थे कि स्वामी जी आपका ये सब चलेगा नहीं इधर, है ना, आपका ये सैफ्रन ड्रेस, आपका हाथ से खान पान वेजिटेरियन फूड, ये अमेरिका में नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी बोले यहां मैं अमेरिकन लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया हूं,
या मैं भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए आया हूं और मैं भगवान कृष्ण को खुश करूंगा तो ये अमेरिका क्या, उससे भी गए गुजरे लोग भी भक्त बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने तो सारे जंगलों में लोग जंगलों में प्राणियों को हरिनाम करवाया, अगर वही चैतन्य महाप्रभु चाहेंगे तो अमेरिकन लोग हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। ये तब की बात है जब ब्रह्मा जी के पास एक भी शिष्य नहीं था और बाकी जो अलग अलग मिशन के लोग गए थे ऑलरेडी वहां, उन्होंने अपना सब चेंज कर दिया था और अमेरिकी जो संस्कृति है वो स्वीकार कर ली थी। ब्रह्मा जी ने दिखा दिया कि नहीं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से सब मानवता को प्रसन्न कर सकते हैं। जब भगवान ने प्रभुपाद जी ने कृष्ण को प्रसन्न किया वहा, तो अमेरिकन लोग भी प्रसन्न हो गए, वो लोग भी खुश हो गए, उन्होंने भी कृष्ण भावना स्वीकार कर लिया, उन्होंने भी सैफ्रन ड्रेस स्वीकार किया, उन्होंने अपने बड़े, हालांकि वो लोग बड़े बड़े हिप्पी जैसे केस रखते थे, ये हिप्पी संस्कृति अमेरिका से आई है, भारत में भी बाद में भारत में लोग भी बड़े बड़े केस रखने लगे, आज भी रखते हैं, क्योंकि भागवतम में वर्णन है लावण्यम केश धारणम, लोग बड़े बड़े केश रखेंगे जिससे सुंदरता उनको लगेंगी। उन्होंने अपने अच्छे अच्छे केस बड़े बड़े लंबे लंबे केस काट डाले, मुंडवा दिया का इसको, मुंडन कर दिया, तिलक लगाना चालू कर दिया, कंठी माला पहना और वेजिटेरियन फूड चालू, कृष्ण प्रसाद लेना शुरू कर दिया। क्यों? कि भगवान प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण जो कि सबके मूल है उनको प्रसन्न किया। कभी भी उन्होंने अमेरिकन लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया। जहां भी जाते थे लेक्चर में वो देखते थे कि अरे ये लोग तो नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संकर सब कुछ करते, लेकिन कभी उन्होंने बोला नहीं कि तुम ठीक है ये भी कर सकते हो, भक्ति भी करो। कभी उन्होंने कभी भी उनको प्रशंसा नहीं आया। उन्होंने बोला कि धर्म के नियम है मांसाहार नहीं करना, नशापान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष नहीं करना, भले वो लोग खुश होना हो, लेकिन उन्होंने यही चाहा कि कृष्ण जो मूल है उनकी अगर मैं सेवा करूंगा वो प्रसन्न होंगे तो सारा समाज प्रसन्न हो जाएगा, सिद्ध कर दिया प्रभुपाद जी ने। तो आज सारे समाज में माधव सेवा हो रही है, अमेरिकन लोग कर रहे हैं, रशियन लोग, अफ्रीकन सारे, जिनको माधव क्या पता ही नहीं था। जब कृष्ण बुक का वितरण करने के लिए लोग जाते थे अमेरिका में तो पहला प्रश्न उनका था कि हु इज दिस बॉय एंड गर्ल, कि ये लड़का लड़की कौन है, तुमको बताना पड़ता था भाई ये राधा रानी है, ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये सबके स्रोत है। तो हाँ ठीक है दे दो, तो लोग ले देते, चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्योंकि प्रभाव था प्रभु जी के प्यूरिटी का और भगवान की कृपा का, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का, कि लोग ले लेते। इस तरह का वर्णन भी महाभारत में आता है कि दुर्योधन दुष्ट था, बहुत दुष्ट था और कपटी भी था, और उसको संग था उसके मामा शकुनी का। तो शकुनी ने एक बार बोला कि देखो अगर तुमको पांडवों को तुम शक्ति से जीत नहीं सकते, पांडवों को तुमको जीतना है तो छल कपट से जीतना पड़ेगा। तो बोले मामा क्या करना है, दुर्वासा मुनि को बुला लो, उनकी आवभगत करो, उनको संतुष्ट करो और उनसे वर प्राप्त करो। तो दुर्वासा मुनि एक बार आए थे दुर्योधन के यहां, दुर्योधन तो समझ गया अच्छा हो गया, आ गए ऋषि जी मुनि महाराज आ गए, अच्छा है, उनकी बहुत सेवा की, उनको खिलाया पिलाया। वो तो हमेशा 10,000 या 60,000 साथ शिष्य के साथ ये करते थे, उनका यात्रा चलता था। आजकल तो मुश्किल हो जाएगा 60,000 शिष्यों के प्रवास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके पास योगिक शक्ति थी, तो योगिक शक्ति से वो कहीं भी जाते थे अपने शिष्यों के लेकर। तो दुर्योधन के महल में आ गए, सारे शिष्य आ गए, सबको खुश कर दिया, रहने को अच्छा व्यवस्था है सब कुछ। तो दुर्वासा मुनि बोले कि आपने मुझे खुश कर दिया, मेरे से वर मांगो। बोले कोई वर नहीं चाहिए, बस जिस तरह आपने मेरे यहाँ आने का आए आप मेरे को हमको संतुष्ट कर दिया, उसे मैं चाहता हूं कि मेरे भाई लोग भी आजकल जंगल में रहते हैं तपस्या कर रहे हैं वहां उनके ऊपर आप कृपा कर दीजिए। तो दुर्वासा मुनि बोले ठीक है कभी मौका मिला तो चला जाऊंगा। तो एक बार ऐसे ही कुछ मौका आया, सोचा दुर्वासा मुनि ने यहां से गुजर रहा हूं, दुर्योधन को वचन दिया था पांडव लोग यहां जंगल में रहते हैं जाता हूं। तो दोपहर का समय था और उन्होंने बोला था दुर्योधन कि तुम दोपहर के समय जाना, क्योंकि उसको पता था कि सुबह समय जाएंगे तो जो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है उस अक्षय पात्र से वो करोड़ों करोड़ों जीवों को भी भरण कर सकती है। बोले सुबह के समय मत जाना, दोपहर के समय जाना, सुबह उनका थोड़ा तपस्या पाठ पाठ चलता है, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। तो सुबह के समय में पांडव लोग सारे ऋषि मुनि को खिलाते थे, जो भी आता था उनको खिलाते थे, फिर खुद ग्रहण करते थे, सबके बाद द्रौपदी ग्रहण करती थी। और एक बार अगर द्रौपदी ने अन्न ग्रहण किया, जो प्रसाद ग्रहण किया, तो फिर अक्षय पात्र से कुछ नहीं मिलता था। द्रौपदी ने उस दिन सब कुछ सबको खिलाने के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण किया और उसने वो पात्र सो धो के रख दिया। उस समय दुर्वासा मुनि का आगमन वहां हुआ हजारों शिष्यों के साथ। युधिष्ठिर महाराज को बोले कि मैं आया हूं आपके पास अतिथि के रूप में, भोजन की व्यवस्था करो और मैं थोड़ा स्नान आदि करके आ जाता हूं शिष्यों के साथ। तो युधिष्ठिर महाराज तो परेशान हो गया, अभी क्या करें भाई, ये दुर्वासा मुनि तो प्रसिद्ध है, ये तो अगर इनको संतुष्ट नहीं करेंगे तो शाप दे देंगे। तो उन्होंने द्रौपदी को बोला, द्रौपदी व्यवस्था करो दुर्वासा मुनि की और सारे शिष्यों की प्रसाद की। तो द्रौपदी भी रोने लगी, अभी तो कुछ बचा नहीं है, ये थोड़ा देर पहले आते तो हो जाता था। कई बार हम लोगों को बोलते टाइम देते हैं कि भाई 12 से 2 के बीच आना तब प्रसाद मिलेगा, 2 बजे के बाद तो माफ करना हमको, तब प्रसाद नहीं सकते हम लोग, शाम को आ जाना, फिर फुटफॉर लाइफ हो जाता है खिचड़ी। तो यहाँ तो अभी फुटफॉर लाइफ खत्म हो गया था, पात्र वगैरह धो धा के रख दिए थे, तो अभी क्या करें। लेकिन भगवान के भक्त का एक गुण है, जब भी कष्ट में रहते हैं समस्या में रहते हैं भगवान को आह्वान करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कृष्ण का स्मरण चालू कर दिया, अभी कृष्ण बजा सकते हैं और कोई नहीं। तो कृष्ण अंतर्यामी पुकार सुन ली, अरे मेरा भक्त कष्ट में, तुरंत द्वारका से वहां प्रकट हो गए, हाजिर हो गए और बोलने लगे, द्रौपदी भूख लगी है कुछ खाने को दो। बोले मावा भगवान, अभी तो दुर्वासा मुनि आके गए, उनके लिए कुछ भी नहीं और आपके लिए भी कुछ नहीं है, अब भगवान जानते हैं सब कुछ। भगवान ने बोला कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तुम जाओ देखो कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं, पात्र धोके रख दिया है। बोले और ढंग से देखो, तो द्रौपदी ने थोड़ा देखा तो पात्र में एक शाक पत्ता कुछ थोड़ा सा लगा हुआ था। बोले वही लेके आओ, मेरे को प्रेम से अगर एक शाक भी मिल जाए तो मैं खुश हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ति अप्रयचित, भगवान ये भी नहीं चाहते कि झूठा मूठा है कुछ नहीं, जो भी लाया लेके आओ। तो एक शाक पत्ता लेके आई द्रौपदी, भगवान ने ग्रहण कर दिया बस और डकार दे दिया, मैं संतुष्ट हो गया है ना। तो जैसे भगवान संतुष्ट हो गए उनका पेट भर गया, वहां सबका पेट भर गया, दुर्वासा मुनि एंड कंपनी सबका पेट भर गया। जैसे अरे वो तो स्नान ही कर रहे थे तो उनको डकारा, ऐसा लगा कि बहुत 56 भोग प्रसाद खा लिया है। जगन्नाथपुरी में भगवान को 56 भोग लगता है, वहां के आनंद बाजार में घूमोगे तो देखने से पेट भर जाता है, खाने की इच्छा रहती नहीं। तो वहां उनका पेट भर गया, उनको लगा कि अरे अभी तक तो भूख लगा था, अभी तो पेट कैसे भर गया। तो दुर्वासा मुनि को पहले से पता था कि यहाँ दुर्योधन दुष्ट है, मेरे को भेजा है भगवान के भक्तों को कष्ट देने के लिए, यहाँ कुछ तो अलग लीला है। क्योंकि हम देखते हैं कि 9वें स्कंद में लीला आती है, अम्बरीश महाराज को तकलीफ दिया था उन्होंने और बहुत बड़ा लेसन उनको मिला था, बहुत बड़ा लेसन उनको मिला था कि भगवान के भक्तों को कष्ट देने का, वो समझ गए पांडव भगवान के भक्त है, भगवान कृष्ण कुछ लीला कर रहे हैं। तो यहां से अभी रफू चक्कर होके छुमंत्र होके भागो, नहीं तो और दंड मिलेगा कृष्ण का। और उन्होंने प्रसाद अगर गलती से तैयार किया होगा और नहीं खाएंगे तो, और भीम अपनी गदा लेके मरेगा, खाओ बनाया अभी। तो वहां से वो गायब हो गए। बोले जिस दिशा से भागो, जहां से रास्ता मिलता वहां से भागो, या रहो मत अभी। तो दुर्वासा और सारे उनके शिष्य मंडली सब जगह भागे, कोई नहीं इधर। बोले अभी कृष्ण बोले जाओ बुलाने के लिए उनको। तो भीम अपना गदा लेके जाने लगा देखने के, तो बोले वाह वहां पुचारे, यहां तो कुछ साधु महात्मा लोग आए थे, कहां है। बोले हम देख रहे भाग रहे थे सब दिशा से, वो लोग पता नहीं क्यों भाग रहे थे। भीम ने सोचा पता नहीं क्या लीला है भगवान की, बोला कुछ नहीं है। तो इससे हम समझते हैं कि अगर भगवान को, भगवान सबकी जड़ है ना, तो भगवान की पूजा करने से सारे जीव संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहां भगवान कृष्ण ने लीला प्रदर्शित की समझाने के लिए कि मगर संतुष्ट होता हूं तो सारे संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की लीला भगवान करते हैं। आगे तात्पर्य प्रभा जी कहते हैं कि यह ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक जीवों से परिपूर्ण है, जीव राशि भी आकीर्ण, कि सारे ब्रह्मांड में जीव भरे हुए हैं, अलग अलग योनि में 84 लक्ष योनि रूप धारण करके ब्रह्मांड में सारे जीव है। लेकिन प्रभा जी कहते हैं कि अज्ञान के कारण कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं केवल पृथ्वी में जीव है, बाकी सारे ग्रह शून्य है। अरे तुम मूर्ख हो, भगवान मूर्ख नहीं है, इन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रह निर्माण किए, खाली ऐसे निर्माण नहीं किए और उसमें कुछ नहीं है। एक बिल्डर है ना, एक बिल्डिंग का निर्माण करता है, थोड़ा ऐसा रखता है उसको, बोलता नहीं अभी ताला है, अगर कोई पूछने आएगा इस बिल्डिंग में हमको कुछ मिलेगा, नहीं नहीं हमने ऐसे बना के रखा है शो के लिए, आप इसका दर्शन करो निकलो। कोई बिल्डर इतना मूर्ख नहीं होता कि बिल्डिंग बना दिया 25 मंजिल की और बेचने को तैयार नहीं है। उसने बिल्डिंग बनाया है ताकि यहां लोग आए रहे, इस बॉम्बे की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, हर जहां जहां में लोग बैठे हैं, झोपड़पट्टी धारावी तो पूरे आशिया खंड में प्रसिद्ध है, हर जगह नुक्कड़ नुक्कड़ जहां जहां जगह मिलेगा वहां लोग बसे हुए हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा हम बंबई गए थे वहां कोई नहीं है, तो मूर्ख बोलेंगे लोग, अरे बड़े बड़े मंजिल बिल्डिंग है 50-50 मंजिल की, वहां ऐसा कैसे खाली हो सकती हो। तो भगवान ने भी इतने सारे बड़े बड़े ग्रह मंडल बनाए खाली रखने के लिए, ग्रह बनाए हैं और उसमें जीव भर दिए, अनंत अनंत कोटि जीव भर दिए उसमें। तो भगवान का कोई भी लोक खाली नहीं है, एक मूर्ख मनुष्य अभी बिल्डिंग बांधता है उसमें लोग भरते हैं, तो भगवान के लोग कैसे खाली हो सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये लोग चांद पे गए थे और वहां से कुछ पत्थर लेके आए, करोड़ का खर्चा किया और पत्थर लेके आए, और लोगों को बोले वहां तो कुछ जीव देखा नहीं हमने। बोले कैसे देख सकते हैं तुम जीव, वहां के जीव आपसे प्रगत है, वो आपके आंखों से देख ही नहीं पाएंगे। अब प्रभुपाद जी कभी कभी बताते हैं कि कोई जगत कोई अमेरिका का या रशिया का विमान भारत में रेगिस्तान में आ जाता है, और रेगिस्तान में क्या मिलेगा उसको, कोई दूर दूर तक जीव नहीं वहां, और रेगिस्तान में उतर के बोलता है कि हम तो भारत में गए थे, और वापस जाके बोलता है कि भारत में तो कोई जीव रहता ही नहीं, कोई मनुष्य ही नहीं, तुम रेगिस्तान में उतरे हो तुमको कौन मिलेगा, है कि नहीं, तुम ऐसे ग्रह मंडल में। एक तो पहली बात यह है कि वो चांद पे गई नहीं, ये सबसे पहली बात है। प्रभुपाद जी ने वहां ही बताया उनको कि वो 1969 में लोग जब गए थे, उन्होंने जब सब दुनिया में बता दिया कि हम लोग तो चांद पे गए हैं, सब लोग ने तो मुंह बंद कर दिया था क्योंकि वो सुपर पावर था, सब लोग उनसे ही पैसा लेते थे, तो अगर कैसे बोलेंगे उनके विरुद्ध, लोग वो वहाँ टेक्नोलॉजी है गए भी होंगे, और लोगों तो ज्ञान शास्त्र का ही नहीं, शास्त्र में कहा गया है कि इस शरीर के साथ आप दूसरे ग्रह मंडल में नहीं जा सकते, और चांद एक हायर प्लैनेटरी सिस्टम है, ऊंचा ग्रह मतलब स्वर्गलोक का ग्रह है वो, और इस शरीर के साथ ज्ञान के साथ और भौतिक योग भौतिक ज्ञान के साथ तो कोई जा नहीं सकता वहां। वहां जाने के लिए आपको पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, आपको यज्ञ करने पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, सतोगुण में रहना तभी जा सकते वहां। वहां के जीव ऐसे तमोगुण से रजोगुण से प्रभावित नहीं है, वहां का हर जीव सतोगुण में है, और वहां जाने का प्रयास भी करोगे तो वहां आपको वापस कर देंगे। जैसे त्रिशंकु भी जाने का प्रयास किया था स्वर्ग में, वो ढकेल दिया जब आप नहीं सकिया। सिंपल है, अगर आप वीजा के बगैर या पासपोर्ट के बगैर अगर कोई देश में प्रवेश करना चाहोगे आपको लेगा क्या, वहां बोलेंगे पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, ये परमिशन दिखाओ तभी एंट्री है, नहीं तो नहीं है, इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुआ। अरे यहाँ चंद्रलोक के लोग और इंद्रलोक के लोग आपको ले लेंगे, मूर्खता बात है। प्रभुपाद जी ने बोला हो ही नहीं सकता, आप लोग गए ही नहीं है। और कभी कभी रिपोर्टर भी प्रभुपाद जी को पूछ देते थे कि ये आजकल चल रहा है कि अमेरिकन लोग चांद पर गए, बोले नहीं गए, डरते नहीं थे प्रभुपाद जी किसी को नहीं डरते थे, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना है उनके जीवन का लक्ष्य था। जो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो किसी को नहीं डरता है। और दूसरी बात यह है कि प्रभुपाद जी का शास्त्र के ऊपर पूरा पूरा विश्वास था कि ये शास्त्र में दिया गया वही सही है। और फिर प्रभुपाद जी ने बोले लोगों को बहुत इच्छा है दूसरे ग्रह पर जाने की, तो प्रभुपाद जी ने उसी समय एक लिख दिया था आर्टिकल, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। आप अन्य लोगों में जाना चाहते हैं ना, उसकी सुगम यात्रा करना, जाओ पुस्तक पढ़ो और उसमें जो भी दिया है उसका पालन करो, फिर अन्य लोग में जाओ। तो कोई भी लोक शून्य नहीं है, हर लोक में जीव सृष्टि है, और हर लोक भगवान ने बनाया है कुछ उद्देश्य के द्वारा। जैसे ऊपर लोक में वो व्यक्ति जा सकता है जो सुख चैन रहना, सुख चाहिए जिसको, आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए, फैक्ट्री में जिसको काम नहीं करना है, वहाँ ऊपर के लोगों में कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, उधर बहुत सारा मेहनत नहीं करना पड़ता है, सारा आनंद ही आनंद है उधर। तो वो लोग बनाए भगवान ने इसलिए कि इस जगत में जो भी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जिसमें थोड़ा सा और ज्यादा भोग करने की इच्छा है, वो लोग ऊपर के लोक में जाते हैं। जैसे कंपनी में कोई अच्छा काम करता है, हाँ, तो गवर्नमेंट कंपनी का मालिक बोलता है भाई चलो 2 महीने की छुट्टी ले लो और 1 लाख रुपए ले लो और छुट्टी मना के आ जाओ, तो फिर लोग जाते हैं कश्मीर में जाते हैं, या कोई ऊटी में जाता है, कोई अलग अलग जगह जाता है, 1 लाख रुपए मिलता है उसको और छुट्टी और पेमेंट चालू रहता है उसका। उसी तरह भगवान बोलते हैं ठीक है, यहाँ तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, दान कर रहे हो, तो ठीक है थोड़ा स्वर्गलोक में घूम के आ जाओ, है ना, तो स्वर्गलोक की सैर करने के लिए जीव जाता है। लेकिन वहां भी कोई स्थायिक रूप नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, आपका पैसा खर्च हो गया, आपकी छुट्टी खत्म हो गई, बाद में आके लुढ़कना पड़ता है और कर्म करो। तो इस ब्रह्मांड में आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुन माम पत्ये तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। तो हमें समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ सुख चैन है ही नहीं, थोड़ी भौतिक आनंद मिलेगा लेकिन जब तक हम कृष्ण को मूल समझकर उनका भजन नहीं करते हैं, उनकी भक्ति में नहीं लगते हैं और जीवन का लक्ष्य नहीं समझते हैं, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करके उनके धाम कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में चले जाना है, जहां से कभी वापस नहीं आना है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो यहां नारद मुनि एक आदर्श पारिवारिक जीवन की कुछ बातें बता रहे हैं और इस श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण उस ब्रह्मांड के वृक्षरूपी ब्रह्मांड के जड़ है और उनकी पूजा करने से, सेवा करने से सब जीवों की पूजा हो जाती है। तो अंत में संदेश तो हम सेम ही होता है हमारा कि हमें कृष्ण की सेवा करना है और इस कलयुग में कृष्ण की सेवा करने का सबसे आसान तरीका है उनके नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और लोगों को भी प्रचार करना है इस नाम के, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। समय हो गया है, अगर किसी का प्रश्न है तो हम एक पर्सनल रूप में ले लेंगे। प्रभुपाद की जय।